पृष्ठ संख्या 432, अध्याय 29। अध्याय शीर्षक है कर्म एवं पुनर्जन्म या कर्म एंड रीबर्थ। शीर्षक है पृष्ठभूमि, परिभाषा एवं व्याख्या। भारतीय दर्शन और धर्म में तथा विश्व के अन्य धर्मों में भी जहाँ कर्म और पुनर्जन्म की चर्चा की गई है, वहाँ कर्म का तात्पर्य, कर्म का नियम या कर्म का सिद्धांत या कर्मवाद है। कर्म को वाद या नियम या सिद्धांत के रूप में समझाने के पहले यह बताना आवश्यक है कि कर्म क्या है। सामान्य रूप से कर्म मनुष्य के शरीर या मन से की जाने वाली वह क्रिया है जो बाह्य या आंतरिक जगत में कोई परिवर्तन उत्पन्न करे। यह कर्म ऐच्छिक भी हो सकता है और अनैच्छिक भी। नैतिक दृष्टि से मनुष्य द्वारा किया गया वही कर्म उत्तरदायित्वपूर्ण माना जाता है जो ऐच्छिक रूप से किया जाता है, अर्थात जिस कर्म को मनुष्य सोच समझकर अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से करता है। अनैच्छिक कार्यों का उत्तरदायित्व नैतिक दृष्टि से मनुष्य के ऊपर नहीं थोपा जाता। अब अगला शीर्षक है कर्म का नियम या कर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत से मनुष्य द्वारा किए गए वे कर्म आते हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से जानबूझकर करता है और उसका फल या नतीजा उसे अवश्य मिलता है। कर्म सिद्धांत का स्पष्ट अर्थ प्रकट करने के लिए कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत कारण नियम है। यह नियम नैतिकता के क्षेत्र में काम करता है। जिस तरह भौतिक क्षेत्र में पाई जाने वाली व्यवस्था की व्याख्या कारण नियम से होती है, उसी प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में पाई जाने वाली व्यवस्था की व्याख्या कर्म सिद्धांत करता है। कर्म सिद्धांत का सरल शब्दों में अर्थ इस प्रकार बताया जा सकता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे या जैसा करोगे वैसा पाओगे, या बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इन सभी कथनों से कर्म सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यदि इसकी व्याख्या करें तो कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता, और साथ ही यदि मनुष्य ने कोई कर्म नहीं किया है तो उसका फल भी उसे नहीं प्राप्त होता। सदैव किए हुए कर्मों के ही फल प्राप्त होते हैं। कर्म सिद्धांत के विषय में डॉक्टर राधा कृष्णन ने सरल रूप में इस प्रकार कहा है, कर्म सिद्धांत के अनुसार नैतिक जगत में अनिश्चित एवं मनमाना कुछ नहीं है। हम वही काटते हैं जो बोते हैं। पुष्प के बीज से पुष्प की खेती फलेगी, पाप का फल भी पाप होगा। छोटे से छोटा कर्म भी चरित्र पर असर रखता है। मनुष्य जानता है कि कर्म में प्रवृत्त कराने वाली जो कुछ प्रवृत्तियां उसके अंदर अब विद्यमान हैं, उसके अपने जानबूझकर किए गए चुनाव का परिणाम है। पृष्ठ संख्या 433। ज्ञानपूर्वक किए गए कर्म आगे चलकर अनजाने स्वभाव बन जाते हैं और आज जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं वे भी पूर्व में ज्ञान पूर्वक किए गए अपने ही कर्मों का परिणाम है। नैतिक विकास को हम ठीक उसी प्रकार रोकने में असमर्थ हैं जैसे समुद्र के ज्वार को एवं नक्षत्रों के मार्ग को रोकना कठिन है। कर्म के उल्लंघन का प्रयत्न ठीक उसी प्रकार निष्फल होगा जिस प्रकार मनुष्य अपनी छाया को लांघ नहीं सकता, अर्थात जैसे मनुष्य की छाया बराबर साथ रहती है, कर्म भी बराबर साथ रहता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि हमारे जीवन के अंदर सब कर्मों का लेखा रहता है, जिसे काल धुंधला नहीं कर सकता और न मृत्यु ही मिटा सकती है। कर्म सिद्धांत के विषय में यह जोर देकर कहा गया है कि सुकर्मों द्वारा ही मनुष्य पूर्ण आत्मा बनता है। बृहदारण्यक उपनिषद का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि पुण्य कर्मों से मनुष्य पूर्ण आत्मा एवं पाप कर्मों से पापी होता है। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य इस लोक में जैसे संकल्प धारण करता है वैसा ही मरने के बाद होता है, अतः मनुष्य को सत संकल्प करने चाहिए। यह कथन कर्म सिद्धांत से साक्षात रूप में संबंधित है। इसके अनुसार हमारे लिए विधान है कि सदिच्छा करो और पुण्य कर्म करो। कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म के प्रतिफल के ही लिए इस जन्म एवं मृत्यु वाले संसार की सृष्टि होती है, जो अनादि है एवं अनंत है। कर्म का सिद्धांत अपनी लपेट में मनुष्यों, देवताओं, पशु जगत एवं वनस्पति सबको ले लेता है। सारांश में कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अपने किए गए कर्मों के फल अवश्य ही भोगने होंगे। कर्म यदि भला है तो फल अच्छा और यदि कर्म बुरा है तो फल बुरा मिलेगा, उसे हम टाल नहीं सकते। कर्म फल भोगने के कारण उसे भाग्य की संज्ञा दी जाती है। आज जो हम कर्म करेंगे भविष्य में इन कार्यों में फल भाग्य बनकर आएंगे। अतीत में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल भविष्य में भाग्य बनकर आएंगे। इस प्रकार अतीत में किए गए कर्मों के फल हमें अवश्य ही भोगने पड़ेंगे, इसे हम टाल नहीं सकते। कर्म सिद्धांत से एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप में हमारे सामने आती है कि हम आज क्या करें। यह निश्चित करना हमारे हाथ में है। हमें अपने सुखद भविष्य के लिए वर्तमान में अच्छे कार्य करने चाहिए। कर्म सिद्धांत में वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों का समावेश है। वर्तमान की दुर्दशा के लिए भूतकालीन कर्म उत्तरदायी है। यदि भविष्य को सुखमय बनाना है तो उसके लिए वर्तमान में अच्छे कर्म करना अनिवार्य है। इस तरह कर्म सिद्धांत में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का महत्व है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अपनी करनी पार उतरनी आदि। इन सब बातों से यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। उपर्युक्त निष्कर्ष से यह भी पता चलता है कि कर्म सिद्धांत में निम्नलिखित मान्यताएं समाविष्ट हैं। पहला है पुनर्जन्म, दूसरा है कारण कार्य का नियम, तीसरा है मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता का होना, चौथा है आत्मा की अमरता, पांचवा है ईश्वर का अस्तित्व, छठवां है कर्म के प्रकार, सातवां पुनर्जन्म और सूक्ष्म शरीर, आठवां कर्म सिद्धांत और शुभ अशुभ का महत्व। क्रमशः इन मान्यताओं को स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि इन मान्यताओं से ही कर्म का सिद्धांत स्पष्ट हो सकता है। पृष्ठ संख्या 434, शीर्षक है पहला, पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्मवाद या कर्म सिद्धांत के साथ पुनर्जन्म का सिद्धांत लगा हुआ है। बिना पुनर्जन्म के कर्म के सिद्धांत की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह भी कहा जाता है कि कर्म सिद्धांत की दृष्टि से पुनर्जन्म नैतिक अनिवार्यता है। यह अनिवार्यता इसलिए कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलना है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। यदि मान लिया जाए कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, तो नैतिक अव्यवस्था फैलने से कोई रोक नहीं सकता। इस अव्यवस्था से तो अनैतिक कार्यों को करने वालों को दंड नहीं मिल पाएगा और अच्छे कार्यों को करने वाला पुरस्कृत नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं, कर्म सिद्धांत पर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। परंतु यह सर्वविदित है कि कर्म सिद्धांत कभी असफल नहीं हो सकता। यह ऐसा नियम है जिसका अपवाद नहीं है। कर्म सिद्धांत के अनुसार तो मनुष्य को अपने हर भले या बुरे कर्मों का फल भोगना ही है। कर्म सिद्धांत में निश्चयवाद होने से प्रत्येक व्यक्ति भले कार्य के लिए प्रेरित होता है और बुरे कार्यों को करने से डरता है। अतः ऐसी स्थिति में हम यह मानने के लिए विवश है कि मृत्यु का अर्थ मनुष्य का विनाश नहीं, वरन मृत्यु ऐसा परिवर्तन है जिसके अनुसार मनुष्य एक काया या शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य रहता है और उसका पुनर्जन्म होता है। इसका यह भी अर्थ होता है कि वर्तमान जन्म के बिना भोगे कर्म फलों को भोगने के लिए मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य का अस्तित्व रहता है और उसे फिर से जन्म लेना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत के साथ पुनर्जन्म का सिद्धांत नैतिक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर पुनर्जन्म में सभी आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के संप्रदायों का विश्वास है। चार्वाक को छोड़कर यह भी सभी मानते हैं कि पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत से फलित होता है। कर्म का सिद्धांत यह मांग करता है कि शुभ कर्मों का शुभ फल मिले और अशुभ कर्मों का अशुभ फल। लेकिन सब कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाना संभव नहीं है, इसलिए कर्म फल भोगने के लिए दूसरा जन्म आवश्यक है। संसार जन्म और मृत्यु की एक अनादि श्रृंखला है। इसका कारण अज्ञान और मिथ्या ज्ञान है। जब तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है, तब संसार का अंत हो जाता है। संसार बंध है। बंध का नाश मोक्ष से होता है। बंध का कारण अज्ञान है, मोक्ष का कारण तत्व ज्ञान है। इस संबंध में यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्मों का मत कुछ भिन्न है। इनके अनुसार आत्मा की अमरता तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया जाता है, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता। इनके अनुसार मनुष्य के जिन कर्मों का फल वर्तमान जीवन में नहीं मिलता, उनका फल पाने के लिए उसकी आत्मा को अंतिम निर्णय के दिन तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी दिन ईश्वर न्याय करता है और लोगों के कर्मों के अनुसार उन्हें नरक या स्वर्ग में भेजा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि ये तीनों पुनर्जन्म में विश्वास न करते हुए भी कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अब अगला शीर्षक है दूसरा, कारण कार्य का नियम। कर्म सिद्धांत में कारण कार्य का नियम समाहित है। कर्म और पुनर्जन्म के बीच यही कारण कार्य का नियम काम करता है। कारण होगा तो कार्य होगा ही। कर्म करेंगे तो उसके फल स्वरूप शरीर अवश्य धारण करेंगे। कर्म और पुनर्जन्म कारण कार्य के सूत्र में लगे हुए हैं। यदि कारण है तो कर्म होगा ही। कर्म तथा पुनर्जन्म को अलग नहीं कर सकते। इन दोनों को मिलाकर ही कर्म सिद्धांत को समझा जा सकता है। यही कर्म सिद्धांत का कारण कार्य का नियम है। पृष्ठ संख्या 435। भौतिक जगत में जिस प्रकार कारण कार्य का नियम काम करता है, उसी प्रकार मनुष्य के आंतरिक जगत में भी यही नियम काम करता है। अर्थात मनुष्य के विचारों में जो कुछ होता है वही परिणाम स्वरूप कार्य के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य वर्तमान जीवन में जो कुछ सुख दुख भोग रहा है वह उसके पूर्व के जीवन के कार्यों का परिणाम है। यही नहीं, मनुष्य का भविष्य का जीवन उसके द्वारा वर्तमान में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम होगा। सारांश यह निकला कि कर्म और उसका फल निश्चित रूप में कारण कार्य के नियम से परिचालित होता है। अब अगला शीर्षक है बिंदु तीसरा, मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता का होना। कुछ लोगों का कहना है कि कर्म सिद्धांत में भाग्यवाद सन्निहित है, किंतु यह कहना पूर्णतया सत्य नहीं है। यह तो निश्चित है कि हमारा वर्तमान जीवन प्रारब्ध के द्वारा परिचालित होता है, परंतु यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने भविष्य के जीवन के लिए स्वतः जिम्मेदार है। वह चाहे तो अपना अगला जीवन अपने वर्तमान के कर्मों द्वारा अच्छा बना सकता है। अर्थात मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता विद्यमान है। वह चाहे तो अच्छा कर्म करके शुभ परिणाम का भागी बन सकता है और चाहे तो अशुभ कर्म द्वारा अपना भविष्य जीवन बिगाड़ सकता है, अर्थात अशुभ परिणामों का भी भागी हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म सिद्धांत भाग्यवादी नहीं है। इसमें मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता भी विद्यमान है। हम अपने सुख दुख के स्वतः उत्तरदायी हैं। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। वह किसी व्यक्ति या ईश्वर को अपने सुख दुख का कारण नहीं बता सकता और अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं पा सकता। मनुष्य में निहित संकल्प की स्वतंत्रता उसके पौरुष को सक्रिय करती है। इसी शक्ति के कारण वह चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इससे सिद्ध है कि कर्म सिद्धांत में कर्म निर्धारण तथा स्वतंत्रता दोनों का समन्वय दिखाई देता है। अब अगला शीर्षक है बिंदु चौथा, आत्मा की अमरता। कर्म सिद्धांत का आधार आत्मा की अमरता है। कर्म सिद्धांत आत्मा की अमरता के अभाव में संभव नहीं। जब यह कहा जाता है कि मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है, तो यह कथन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य के चेतन शरीर में एक अमर आत्मा का निवास होना स्वीकार किया जाए, क्योंकि मनुष्य का एक ही जन्म किसी कर्म के परिणाम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। वह अच्छा या बुरा कर्म करता है और उसका परिणाम उसे मिल नहीं पाता और वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। फिर नैतिक कर्मों का शुभ परिणाम या अनैतिक कर्मों का अशुभ परिणाम उसे कब मिलेगा? यह तभी संभव है जब एक अमर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया जाए। अमर आत्मा के विषय में यह कहा जाता है कि आत्मा शरीर से भिन्न एक परम चेतन स्वरूप है। शरीर तो भौतिक तत्वों से निर्मित है, उसका जन्म वृद्धि तथा विनाश होता है। इसके विपरीत आत्मा आध्यात्मिक स्वरूप का होता है। वह अचल, अजर, अमर, निरंतर अस्तित्व में रहने वाला अविनाशी तत्व है। शरीर में जो चेतना देखी जाती है वह आत्मा के कारण ही संभव है। इसी के कारण परिवर्तनशील शरीर में एक अखंड व्यक्ति बना रहता है। यह अखंड व्यक्तित्व जन्म जन्मांतर बना रहता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि एक अमर आत्मा का अस्तित्व न होता तो मनुष्य के जीवन में अनेक घटित होने वाली घटनाएं जो एक क्रम में बनी रहती हैं संभव न होती। उन घटनाओं को आत्मा के अभाव में एकबद्ध करना असंभव होगा। चेतना, स्मृति आदि की संभावना समाप्त हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 436। मनुष्य को चेतना और स्मृति के कारण ही सारी घटनाएं याद रहती हैं और यही अनुभव यह भी सिद्ध करते हैं कि एक आध्यात्मिक प्रकृति की एक चेतन तथा अमर आत्मा का अस्तित्व है। पिछले जन्मों की अनेक लोगों द्वारा अनेक घटनाओं को याद करने का प्रमाण मिलता है। कभी कभी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं कि एक बालक ने अपने पिछले जन्म की स्थिति का वर्णन किया और वह सत्य पाया गया। दिल्ली की शांति देवी वाली घटना तो बहुत प्रसिद्ध हो गई है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई हैं। संशयवान लोगों ने पूरी जागरूकता से उनकी प्रामाणिकता का परीक्षण भी किया है। नैतिकता से संबंधित बातें भौतिक शरीर से नहीं चेतन आत्मा से ही संभव कही जा सकती हैं। जैसे किसी भले बुरे कर्मों को करने न करने के निर्णय का कर्ता यही आध्यात्मिक चेतन तत्व ही है। यही स्वतंत्र आत्मा स्वतंत्र कर्ता है। आत्मा ही विवेक से निर्णय करने वाला तत्व है। नैतिकता का प्रश्न इसी आत्मा से संबंधित है। उचित अनुचित का प्रश्न यही पहचानता है। आत्मा की अमरता को स्वीकार न करने से नैतिक अव्यवस्था फैल जाएगी। मनुष्य के किए गए कर्मों का परिणाम किसे मिलेगा? जब हम एक अमर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, आत्मा की अमरता से मनुष्य में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में यह विश्वास घर कर जाता है कि जीवन असीमित है। मनुष्य अपने शुभ कर्मों से जीवन का परिष्कार कर सकता है। नैतिक दृष्टि से मनुष्य अपने उत्थान का मार्ग चुनता है और आगे बढ़ता है। अब अगला शीर्षक है बिंदु पांचवा, ईश्वर का अस्तित्व। कर्म सिद्धांत के साथ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने में दो स्पष्टतः मत दिखाई पड़ते हैं। जितने ईश्वरवादी मत या दर्शन हैं वे ईश्वर का अस्तित्व इसलिए स्वीकार करते हैं कि यदि कर्माध्यक्ष के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया जाए तो कर्म का सिद्धांत नैतिकता के क्षेत्र में केवल कार्य कारण के नियम के रूप में रह जाता है। यह कार्य कारण नियम बिना ईश्वर के कैसे कार्य कर सकता है? ईश्वर ही वह सत्ता है जो कार्य कारण नियम अर्थात कर्म सिद्धांत को निर्देशित करता है। ईश्वर परम सत्ता है, वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, नियंता, सर्वव्यापक, क्षमाशील, उद्धार करता है। अनेक जन्मों में व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप फल देने वाला ईश्वर ही है। वह देखता है कि कर्म के अनुसार किसे फल मिलता है। समाज, प्रशासन या अन्य लोगों से व्यक्ति चाहे अपने को छिपा सकता है, अपने दुष्कर्मों से बच सकता है, किंतु ईश्वर से वह अनदेखा नहीं रह सकता। ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर बुरे कर्मों के लिए अवश्य दंड देगा तथा शुभ कर्मों का अवश्य पुरस्कार देगा। ईश्वर के कारण ही लोग बुरे कार्यों को करने से डरते हैं और नैतिक कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यदि ईश्वर न होता तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम कौन देता? सारांश में कर्म सिद्धांत में यह समाहित है कि कर्माध्यक्ष के रूप में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना आवश्यक है। यही ईश्वर मनुष्य के कर्मों के अनुसार परिणाम देता है। नैतिकता की दृष्टि से ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना अनिवार्य है। अनेक जन्मों के बाद भी मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम को पाने से वंचित नहीं रह सकता। कुछ निरीश्वरवादी जैसे जैन, बौद्ध, सांख्य तथा मीमांस ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते और कर्म सिद्धांत को बिना कर्माध्यक्ष या ईश्वर के स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार कर्म सिद्धांत अपने में पूर्णतया समर्थ है, वह स्वतः ही कर्म फल की व्याख्या कर लेता है। अब अगला शीर्षक है बिंदु छठवां, कर्म के प्रकार। कर्म सिद्धांत का सीधा संबंध कर्मों से है। कर्म फल की प्राप्ति होनी ही है। कर्म फल की प्राप्ति की दृष्टि से कर्मों का वर्गीकरण किया गया है। भारतीय दर्शन में दार्शनिकों ने अपने मत के अनुसार कर्मों का वर्गीकरण किया है। पृष्ठ संख्या 437। कर्म सिद्धांत में विश्वास करने वाले दार्शनिकों ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान जीवन अतीत जीवन के कर्मों का फल है और भविष्य का जीवन वर्तमान के जीवन का फल होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भूत, भविष्य और वर्तमान कारण कार्य की श्रृंखला में ग्रथित हैं। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो कर्म सिद्धांत के अनुसार ऐसी मान्यता है कि दुख व्यक्ति के पूर्व जीवन का फल है। यदि व्यक्ति भविष्य के जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे वर्तमान जीवन में उसके लिए प्रयत्न करना होगा। इसी अर्थ में कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। कर्म की इस मान्यता को विभिन्न दर्शनों में अपने तरीके से निरूपित किया गया है। कर्म सिद्धांत को सर्वप्रथम वेद में देखा जा सकता है। वेद इसे नैतिक व्यवस्था के रूप में मानता है। इस व्यवस्था को वह ऋत कहता है। ऋत और कुछ नहीं जगत की व्यवस्था के रूप में है, अर्थात जगत की व्यवस्था नैतिक व्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है। वेद के पश्चात ऋत का मत उपनिषद में कर्म सिद्धांत या कर्मवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। न्याय वैशेषिक कर्म सिद्धांत को अदृष्ट की संज्ञा देते हैं। इसे अदृष्ट इसलिए कहा जाता है कि यह दृष्टिगत नहीं होता, विश्व इसी से प्रभावित है। मीमांसा में इसे या कर्म सिद्धांत अपूर्व कहा गया है। अन्य वैशेषिक और मीमांस में अंतर यह है कि जहाँ न्याय वैशेषिक यह मानता है कि अदृष्ट का संचालन ईश्वर द्वारा होता है, वहाँ मीमांसा का कहना है कि अपूर्व को संचालित करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। कर्म सिद्धांत के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म सिद्धांत केवल उन्हीं कर्मों पर लागू होता है जो कर्म वासना या रोग द्वेष से युक्त होते हैं। इसके विपरीत निष्काम भाव से किए गए कर्मों के विषय में कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता। कहा जाता है कि निष्काम कर्म भूंजे हुए ऐसे चने के समान है जो जमीन में बोने पर अंकुरित नहीं हो सकता, अर्थात निष्काम कर्म पर कर्म सिद्धांत कार्य नहीं कर सकता। कर्मों का एक वर्गीकरण कर्म के फल की प्राप्ति की दृष्टि से भी किया गया है। ऐसे तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला है प्रारब्ध, दूसरा है संचित और तीसरा है संचयमान अथवा क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म उन्हें कहते हैं जिन कर्मों को मनुष्य पहले कर चुका है और जिसका फल व्यक्ति को मिलना प्रारंभ हो गया है। इसका संबंध अतीत के जीवन से है। प्रारब्ध कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना है। संचित कर्म उस कर्म को कहते हैं जिन्हें मनुष्य अपने पूर्व जन्म में कर चुका है किंतु उसके फल की प्राप्ति अभी शुरू नहीं हुई है। कहा जाता है कि साधना या ईश्वर की कृपा से संचित कर्मों के फल में परिवर्तन करना मनुष्य के लिए संभव है। संचयमान या क्रियमाण कर्म उसे कहते हैं जिन्हें मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में कर रहा है और उन कर्मों का फल इस जीवन में नहीं भविष्य के जीवन में प्राप्त होगा। इस क्रियमाण या संचयमान कर्मों को करने में मनुष्य स्वतंत्र रहता है। इन कर्मों द्वारा मनुष्य अपने भविष्य के जीवन का अथवा भाग्य का निर्माण कर सकता है। यदि मनुष्य सत्कर्म करता है तो उसका भावी जीवन सुधर जाता है, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति में ये कर्म सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब अगला शीर्षक है बिंदु सातवां, पुनर्जन्म और सूक्ष्म शरीर। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसके फलानुसार अगले जन्म में शरीर ग्रहण करके सुख दुख उत्कर्ष अपकर्ष को प्राप्त करता है। यहाँ प्रश्न होता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है, अर्थात मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तब यह सब कुछ कैसे संभव होता है? इसके उत्तर में यही कहा जाता है कि यह सब सूक्ष्म शरीर के कारण ही संभव होता है। होता यह है कि इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है। पृष्ठ संख्या 438। विवेक चूड़ामणि में सूक्ष्म शरीर के विषय में कहा गया है, वागादि पांच कर्मेंद्रियाँ, श्रवणादि पांच कर्मेंद्रियाँ, प्राणादि पांच प्राण, अमास्यादि पांच भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या तथा काम और कर्म, यह पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म शरीर पुराण जन्म के समय आत्मा के साथ पहले वाले शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के विषय में यह भी कहा गया है कि यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला होता है और स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। यही शरीर संस्कारों और कर्म फलों का वाहक होता है। कहते हैं, जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता यह शरीर आत्मा के साथ रहता है, मोक्ष के साथ सूक्ष्म शरीर नहीं रह जाता। अब अगला शीर्षक है 8वां, कर्म सिद्धांत और शुभ अशुभ महत्व। कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी उपयोगिता और महत्व इस बात में है कि यह शुभ कर्म के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत में यह समाहित है कि सदैव ही शुभ की जीत होती है, अशुभ कर्मों से बचने की प्रेरणा इसलिए मिलती है कि अगले जन्म में अशुभ कर्मों का फल दुखद होता है। दुख से बचने तथा नैतिक कर्म के सुपरिणामों की प्राप्ति की लालसा में मनुष्य सदकर्म में प्रवृत्त होता है। शुभ की अवधारणा ही मनुष्य को सुखद भविष्य के लिए प्रेरित करती है। कर्म सिद्धांत का आशावाद शुभ के कारण है, क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाता है कि सदैव शुभ की विजय होती है और अशुभ पराजय को प्राप्त होता है। शुभ अशुभ में जय पराजय का आधार और कुछ नहीं, ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर स्वतः शुभ स्वरूप है। अतः कर्म सिद्धांत में शुभ की विजय सुनिश्चित है। यही जीवन में सद्गुणों की प्राप्ति का निर्णायक तत्व है। ईश्वर तो अनंत कर्माध्यक्ष के रूप में सब कुछ है ही, ऐसी मान्यता है। अब अगला शीर्षक है, कर्म सिद्धांत की व्यवहारिक उपयोगिता। कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण ही समाज में अपनी स्थिति को निर्धारित करता है। सुख दुख, उत्कर्ष अपकर्ष का उत्तरदायित्व उसके कर्मों पर है, न कि ईश्वर पर। ईश्वर सुख दुख का दाता नहीं, मनुष्य के कर्म ही उत्तरदायी हैं। नैतिक दृष्टि से व्यक्ति को अपने जीवन को सुधार लेने में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। कर्म सिद्धांत के कारण हम यह भी नहीं कह सकते कि ईश्वर पक्षपात करता है, अर्थात हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर किसी को सुखी और धनवान बनाता है और किसी को दुखी और कंगाल। कार्य ही प्रमुख है, वही हमारे जीवन की अच्छी या खराब स्थिति के लिए उत्तरदायी है। इतना ही नहीं, मनुष्य कर्म सिद्धांत के कारण ही कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांति का अनुभव इसलिए करता है कि उसकी चिंतन धारा या सोच और विश्वास विनाशकारी नहीं होता। वह यह सोचता है कि जीवन में जो कुछ मिला है वह सब हमारे कर्मों का फल है। पुनर्जन्म में आस्था से व्यक्ति को अपने सुधार की आशा जगती है। पिछले कर्मों से यह शिक्षा मिल जाती है कि भविष्य में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जाएगा जिससे दुख भोगना पड़े। यह भी देखा जाता है कि मनुष्य को जीवन में बहुधा लाभ हानि का सामना करना पड़ता है। बहुत सावधान होकर कर्म करने पर भी कभी उल्टा परिणाम मिलता है और कभी अकल्पनीय लाभ भी मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका स्पष्टीकरण कर्म सिद्धांत के आधार पर ही किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 439। कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी उपयोगिता यह भी है कि इसके आधार पर मनुष्य न तो केवल भाग्यवादी बनकर रह जाता है और न ही स्वतंत्रता का अनुभव करता है, अर्थात इसमें भाग्यवाद तथा संकल्प की स्वतंत्रता का सामंजस्य देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति इतना तो स्वतंत्र है कि उसे जो कुछ भाग्य से मिला है उसका उपयोग वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। कर्म सिद्धांत में पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता का व्यवहारिक लाभ है। हम जीवन के प्रति आशावान होते हैं। अगले जन्म में व्यक्ति सुधार की आशा से सदकर्म कर सकता है। कर्म सिद्धांत में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इससे व्यवहारिक लाभ यह मिलता है कि ईश्वर शुभ कर्मों का शुभ परिणाम अवश्य देगा। ईश्वर के यहाँ न्याय होता है, अन्याय नहीं। वह शुभ कर्मों का शुभ परिणाम अवश्य देता है। ईश्वर नैतिकता के लिए बहुत बड़ा संबल है। सारांश में कर्म सिद्धांत मनुष्य को पौरुषवान बनाता है, नैतिकता के लिए प्रेरित करता है, संतोष तथा आशा का संचार करता है। शीर्षक है आलोचना। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत की बहुधा इस आधार पर कटु आलोचना की जाती है कि इन दोनों सिद्धांतों में आत्मा की अमरता, ईश्वर तथा भविष्य के जीवन में पिछले किए गए कर्मों का फल मिलता है। कर्म सिद्धांत के यही आधार हैं, किंतु ये सभी आधार अवैज्ञानिक प्रतीत होते हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, अतः ये सभी अमान्य है। इतना ही नहीं, इन मान्यताओं में अनेक विसंगतियां भी हैं। इन विसंगतियों के कारण इन्हें स्वीकार करना संभव प्रतीत नहीं होता। संक्षेप में हम कुछ प्रमुख आलोचनाओं की विवेचना निम्न रूपों में कर सकते हैं। इसमें पहला है कर्म सिद्धांत और ईश्वर। कर्म सिद्धांत ईश्वर के लिए एक चुनौती है। यदि मनुष्य जैसा करेगा वैसा भरेगा, यह सत्य है तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता। कहा जाता है कि ईश्वर ही जन्म मरण का कारण है, वह संपूर्ण सृष्टि का कारण है, तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि मनुष्य ने जो कुछ भूतकाल में किया था वह वर्तमान काल में भोग रहा है और जो वर्तमान काल में कर रहा है उसका फल भविष्य में प्राप्त करेगा। यदि यही सत्य है तो कर्मवाद या कर्म सिद्धांत ही सब कुछ है। ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से यहाँ कर्मवाद और ईश्वर में कोई मेल या संगति नहीं है। बहुत से धर्म जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते किंतु कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, उनके अनुसार कर्म पुनर्जन्म की व्याख्या सरलता से की जा सकती है। उनके मत में ईश्वर के अस्तित्व और कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर व्यक्ति द्वारा किए गए दुष्कर्म के फल को अर्थात दुख को रोक देता है तथा उसके स्थान पर सुख प्रदान करता है, तो क्या ईश्वर अन्यायी नहीं कहा जाएगा? शीर्षक है निराकरण। उपयुक्त तर्क का निराकरण यह कहकर किया जा सकता है और कर्म सिद्धांत तथा ईश्वर के मध्य संगति बैठाई जा सकती है कि कर्म सिद्धांत तो एक नियम है और नियम को चलाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। नियम एक अचेतन शक्ति है, ईश्वर परम चैतन्य है। अचेतन शक्ति स्वतः कोई क्रिया नहीं कर सकती, इसलिए इसके संचालन और क्रियान्वयन के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ईश्वर को कर्माध्यक्ष के रूप में भी तो स्वीकार किया गया है। कर्माध्यक्ष के रूप में ईश्वर को कर्म सिद्धांत के संचालन तथा कर्म के फल को प्रदान करने वाला ईश्वर ही तो है। अतः कर्म सिद्धांत के साथ ईश्वर को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पृष्ठ संख्या 440। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस तर्क को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि कुछ लोगों की यह आपत्ति कि कर्म सिद्धांत आस्तिकवाद के साथ मेल नहीं खाता या कर्म एक विवेक शून्य एवं अचेतन तत्व है जो समस्त संसार पर अधिकार जमाए हुए हैं और यह ईश्वर के भी अधीन नहीं है, या हमें ऐसे न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं जो एक यांत्रिक कानून का व्यवस्थापक है। इन सभी आक्षेपों के उत्तर में डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि परब्रह्म की सत्ता के साथ कर्म सिद्धांत की कोई असंगति नहीं है। कर्म का नैतिक सिद्धांत परब्रह्म के रूप की अभिव्यक्ति है। मानवीकरण की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक दैवी शक्ति सारी प्रक्रिया का नियंत्रण एवं संचालन करती है। वेदों में इस नियम को ऋत कहा गया है। वरुण ऋत का स्वामी है। कर्म देवताओं के अपरिवर्तनशील कार्य को बताता है। यह यथार्थ सत्ता के स्वरूप की अभिव्यक्ति है। नैतिक विकास में किसी प्रकार की स्वेच्छापूर्ण बाधा को यह असंभव बना देता है। आधुनिक समय के वैज्ञानिक नियम व प्रवृत्ति के सिद्धांत भी इसी परिणाम पर पहुँचते हैं। मनमाने हस्तक्षेप के अनुकूल वे भी नहीं बैठते। यदि ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए चमत्कार आवश्यक है तो विज्ञान ने ऐसे ईश्वर को सदा के लिए विदा कर दिया है। दैवी हस्तक्षेप का भी नियमों के ही अधीन रहकर नियंत्रण होता है। ईश्वर अपनी व्यक्तिगत चेष्टाओं और संकल्पों द्वारा कर्म नहीं करता। केवल कर्म का सिद्धांत ही हमें धार्मिक विश्वास का ठीक ठीक विचार दे सकता है। यह एक पूर्ण ब्रह्म के विवेक पूर्ण स्वरूप का हमारे सामने प्रतिपादन करता है। यह एक ढांचा है जिसके द्वारा जीवात्मा कर्म करती है। धार्मिक जगत की स्वतंत्रता कठोर यांत्रिक व्यवस्था के साथ प्राकृतिक जगत में अव्यक्त होती है। स्वतंत्रता एवं कर्म एक ही पर्याय सत्ता के दो पक्ष हैं। यदि ईश्वर विश्व के अंदर अवास्तविक है, तब उसका भाव भी इस जगत रूपी यंत्र के द्वारा विद्यमान है। दैवी शक्ति नियम में अपने को अव्यक्त करती है, पर नियम ईश्वर नहीं है। अब बिंदु दूसरा है, कर्म सिद्धांत और भाग्यवाद। कर्म सिद्धांत में भाग्यवाद की मान्यता मिली हुई है, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। उसके भाग्य में जो कुछ लिखा है या पूर्व जन्म में उसने जो कुछ किया है उसका फल प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे तो भाग्य के अनुसार फल पाना ही है, उसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। निराकरण। इस आलोचना के विरोध में यह कहा जा सकता है कि भाग्य का प्रश्न तो मनुष्य के वर्तमान जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य ने जो भूत में कर्म किया है उसके फलस्वरूप वर्तमान जीवन में सुख या दुख भोग रहा है। जहाँ तक भविष्य में जीवन का प्रश्न है, उसमें भाग्यवाद का दोष नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तो भविष्य के जीवन के लिए मनुष्य वर्तमान में स्वतः प्रयास करके अपने शुभ कर्मों द्वारा अच्छे परिणाम की आशा करता है। ऐसी स्थिति में तो यह कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वतः कर सकता है। अतः यहाँ भाग्यवाद का दोष थोपना व्यर्थ है। बिंदु तीसरा है, कर्म सिद्धांत और सामाजिक सेवा। कर्म सिद्धांत के विरुद्ध यह आक्षेप लगाया जाता है कि यह सिद्धांत सामाजिक सेवा में रुचि नहीं लेता। कर्म सिद्धांत के विषय में कहा जाता है कि यह सामाजिक सेवा में रुचि लेने से व्यक्ति को रोकता है, क्योंकि तर्क यह दिया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है, अतः उसकी सहायता करना व्यर्थ है। इसी आक्षेप को डॉक्टर राधा कृष्णन ने प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ऐसे भी समीक्षक हैं जो सोचते हैं कि कर्म सिद्धांत की सामाजिक सेवा से संगति नहीं बन सकती। यह कहा जाता है कि एक दूसरे के बोझ पर बल नहीं दिया गया है। पृष्ठ संख्या 441, शीर्षक है निराकरण। इस आक्षेप का उत्तर देते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि वस्तुतः उपनिषदों का मत है कि हमें समाज सेवा द्वारा ही कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। जब तक हम स्वार्थ को लेकर काम करते हैं, हम कर्म बंधन के नियम के अधीन रहते हैं। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तक तुम इस प्रकार निष्काम कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करते हो, ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि कर्म तुम्हें बंधन में डाल सके। यह तर्क इस उपनिषद से देते हुए उपयुक्त आक्षेप का उत्तर देते हैं। पुनः कहते हैं, कर्म के कारण नहीं किंतु स्वार्थमय कर्म के कारण ही हम जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार कर्म सिद्धांत को यदि ठीक ठीक समझा जाए तो वह नैतिक पुरुषार्थ को निरुत्साहित नहीं करता, न वह मन को और न इच्छा को ही जकड़ता है। कर्म सिद्धांत केवल इतना ही कहता है कि प्रत्येक कर्म पूर्व स्थिति अवस्थाओं का अनिवार्य परिणाम है। कर्म सिद्धांत मनुष्य को जकड़ नहीं रखता। मनुष्य अपनी स्वतंत्र संकल्प शक्ति का उपयोग कर सकता है। सेवा कार्य के लिए वह स्वतंत्र है। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, यदि मनुष्य केवल प्राकृतिक अवस्थाओं का ही समुदाय मात्र होता तो वह पूर्णतया कर्म सिद्धांत के अधीन रहता, किंतु उसके अंदर आत्मा का निवास है जो अधिष्ठाता या स्वामी है। कोई बाह्य पदार्थ उसे विवश नहीं कर सकता। हमें निश्चय है कि संसार की भौतिक शक्तियों को धार्मिक शासन के आगे अवश्य झुकना चाहिए और इसलिए कर्म सिद्धांत को भी आत्मा की स्वतंत्रता के आगे झुकना चाहिए। मनुष्य को उच्चतम स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि वह परब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। जब मनुष्य परमात्मा से एकाकार प्राप्त कर लेता है वह स्वतंत्र भी होता है। उसे कोई कर्म बंधन में नहीं डालता और उसे अपने कर्तव्य का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ रहता है। वह संसार के सेवा कार्य में रहते हुए भी बंधन में नहीं रहता। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन पुनः छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण देते हुए अपने मत का समर्थन करते हैं। जो मनुष्य बिना आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए और सत्य इच्छाओं को बिना जाने इस संसार से विदा होता है, प्रत्येक लोक में उसका जीवन बंधन का जीवन होता है। जबकि उस मनुष्य के भाग में जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके और सब सत्य इच्छाओं को जानकर इस संसार से विदा होता है, सब लोकों में स्वतंत्रता का जीवन है। परमात्मा के साथ एकाकार होना सर्वोच्च स्वतंत्रता की प्राप्ति है। हम जितना ही अधिक ईश्वर की सन्निधि में जीवन व्यतीत करेंगे उतना ही अधिक आत्मा के अधिकार का उपयोग करेंगे और उतने ही हम मुक्त होंगे। अब बिंदु चौथा है, जीवों तथा कार्यों में से किसका अस्तित्व पहले माना जा सकता है। कर्म सिद्धांत के विषय में यह एक जटिल समस्या है कि काल दृष्टि से कर्म तथा जीव में किसका अस्तित्व पहले माना जाए। कर्म सिद्धांत में यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, परंतु कर्मों को पहले मानने पर यह कठिनाई उत्पन्न होगी कि बिना जीव के अस्तित्व के कर्मों का अस्तित्व कैसे संभव है। यदि जीव को काल की दृष्टि से पहले माना जाए तो वह बिना कर्म किए किस कर्म का फल प्राप्त करता है। कर्म सिद्धांत के इस जटिल प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। कर्म या जीव में से किसका अस्तित्व पहले था, इसका कोई संतोषजनक उत्तर संभव नहीं है। कर्म को अनादि कहकर कुछ लोग इसका उत्तर देते हैं, किंतु वह संतोषप्रद समाधान नहीं है। पृष्ठ संख्या 442। अब बिंदु पांचवा है, कर्म सिद्धांत और सामूहिक कष्ट। कर्म सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की जाती है कि एक ओर तो कर्म सिद्धांत यह कहता है कि जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, अर्थात व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है, परंतु दूसरी ओर यह देखा जाता है कि सामूहिक रूप से बाढ़, भूकंप तथा अनेक ऐसे तूफान भी प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं जिनमें अनेक व्यक्ति कष्ट पाते हैं। ऐसी दशा में क्या कर्मवाद या कर्म सिद्धांत अपने दावे से डिग नहीं जाता? सामूहिक रूप से लोगों को दुख पाने का क्या कारण कर्म सिद्धांत द्वारा बताया जा सकता है? क्या कर्म सिद्धांत इस सामूहिक दुख या कष्ट की अपनी कसौटी के आधार पर संतोषप्रद व्याख्या कर सकता है? उत्तर होगा नहीं। कर्म सिद्धांत सामूहिक कष्ट का संतोषपूर्ण उत्तर इसलिए नहीं दे पाता कि सामूहिक कष्ट में मान लीजिए एक ओर जहां दुर्जन और दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्कर्मों के कारण कष्ट पाते हैं, तो उस समूह में कुछ ऐसे भी तो व्यक्ति होते हैं जो अच्छे और साध व्यक्ति भी होते हैं। कितने निर्दोष तथा ऐसे निर्बल पशु पक्षी भी तो होते हैं। शीर्षक है निराकरण। इस समस्या का समाधान कुछ लोग पुनर्जन्म के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं इस सामूहिक कष्ट का कारण पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का परिणाम है, किंतु यह समाधान इसलिए उचित नहीं है कि पुनर्जन्म का तर्क तो कर्म सिद्धांत पर आधारित है, तो फिर इससे कर्मवाद की पुष्टि कैसे की जा सकती है? सारांश में निर्णय यही दिया जा सक्ता है कि इस आक्षेप का उत्तर कर्म सिद्धांतवादी संतोषजनक ढंग से नहीं दे सकते। अब बिंदु छठवां है कर्म सिद्धांत और भाग्यवाद, फैटालिज्म। कर्म सिद्धांत के विरुद्ध यह आक्षेप लगाया जाता है कि कर्म सिद्धांत भाग्यवाद को प्रश्रय देता है, अर्थात इसके अनुसार मनुष्य अपने अपने कृत कर्मों का फल भोगता है, जैसा करता है वैसा फल पाता है। यदि यह सच है तो फिर मनुष्य को किसी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। कर्म के अनुसार फल तो पाना ही है। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। भाग्यवाद मनुष्य को निष्क्रिय और निठल्ला बना देता है। भविष्य में कुछ बनना या कर दिखाना है कैसे संभव कहा जा सकता है? अब शीर्षक है निराकरण। कर्म सिद्धांत पर भाग्यवाद का यह आक्षेप लगाना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना उचित प्रतीत होता है कि भाग्यवाद का प्रश्न जहाँ तक वर्तमान जीवन का संबंध है वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि वर्तमान जीवन में भाग्यवाद को स्थान दिया जाता है, क्योंकि वर्तमान जीवन तो भूत के जीवन के कर्मों का ही फल है। यदि भविष्य जीवन को देखे तो वह वर्तमान में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ भाग्यवाद नहीं, व्यक्ति का अपना पौरुष और प्रयत्न काम करता है। मनुष्य अपने वर्तमान के कर्मों से अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकता है। यहाँ तो हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य में इतना पौरुष है कि वह अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। इससे तो भाग्यवाद के आरोप का खंडन हो जाता है। अब बिंदु सातवां है, पुनर्जन्म का विचार अवैज्ञानिक है। कहा तो यह जाता है कि पुनर्जन्म का विचार कर्म सिद्धांत के अनुसार एक नैतिक अनिवार्यता है, अर्थात यदि हम कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो हमें यह मानना आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान जन्म में बिना भोगे कर्म फलों को भोगने के लिए मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व रहता है और वह पुनः जन्म लेता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कर्म सिद्धांत की मान्यता समाप्त हो जाती है। पृष्ठ संख्या 443। इस विचार के विरोध में आलोचकों का कहना है कि आत्मा, ईश्वर, सूक्ष्म शरीर और पुनर्जन्म आदि की बातें केवल मान ली गई हैं। इनके समर्थन में न कोई प्रमाण है और न कोई प्रमाण मांगता ही है। इनको केवल मान लिया गया है। प्रश्न है, क्या वैज्ञानिक दृष्टि से इन विषयों के बारे में बिना संदेह किए मान लिया जाए? उत्तर होगा नहीं। वैज्ञानिकता की दृष्टि से कोई व्यक्ति इनमें विश्वास नहीं करेगा। शीर्षक है निराकरण। उपयुक्त तर्क के विरोध में यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक पूर्व जन्म का प्रश्न है, इसको भ्रांति मूलक कहना उचित नहीं है, क्योंकि लोगों ने पूर्व जन्म को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म की बातों को याद ही नहीं कर पाता। किंतु पूर्व जन्म की बात तो दूर इसी वर्तमान जीवन की बहुत सी बातों को हम याद नहीं कर पाते। तो क्या इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि वे बातें या घटनाएं घटी ही नहीं? नहीं, घटनाएं अपने में यथार्थ हैं, हम उन्हें याद करने में असमर्थ हो गए हैं। इसी तरह पूर्व जन्म की घटनाओं को याद न कर पाने का यह अर्थ नहीं हुआ कि पूर्व जन्म होता ही नहीं। अब बिंदु आठवां है, पूर्व जन्म और पितृ परंपरा का सिद्धांत। कर्म सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश लेता है। यह तो ठीक है, किंतु प्रश्न होता है कि क्या इससे पुनर्जन्म से पितृ परंपरा का विरोध नहीं होता? क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल का सिद्धांत पितृ परंपरा के नियम को लेकर चलता है? इस प्रश्न का उत्तर यह सिद्धांत सही सही नहीं देता। इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत का सिद्धांत इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत पितृ परंपरा का मत बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। पुनर्जन्म का यह व्यापक और विस्तृत सिद्धांत इस प्रकार है, जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति से सामग्री लेकर उससे अपनी छेनी द्वारा दूसरी आकृति बनाता है, जो अपेक्षाकृत अधिक नई एवं अधिक सुंदर होती है। वैसे ही यह आत्मा भी अपना शरीर छोड़कर और अज्ञान को दूर करके अपने लिए एक अन्य अपेक्षाकृत नए एवं अधिक सुंदर आकार का निर्माण करती है। वह चाहे पितरों का हो, गंधर्वों का हो या देवताओं का हो, प्रजापति का हो या ब्रह्म का हो अथवा अन्य प्राणियों का। कहीं कहीं यह कहा गया है कि मृत्यु के उपरांत अपने अंदर जीवन धारक नैतिक प्रवृत्तियों को एकत्र करके आत्मा विदा होती है और उन सबको दूसरे शरीर में साथ ले जाती है, चाहे वह शरीर उत्पन्न हो या नहीं। जैसा कि छोड़े हुए शरीर के द्वारा किए कर्मों के अनुसार उसे नए जन्म में प्राप्त हुआ है, पुनर्जन्म की संभावना को उपनिषद के सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करके भी समझाया गया है। उपयुक्त आक्षेप की पर्याप्त सीमा तक व्याख्या संभव हो जाती है। इस व्याख्या के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर मन एवं आचरण का वाहक बनता है और भौतिक शरीर के विनाश के साथ इसका विनाश नहीं होता। यही सूक्ष्म शरीर नए भौतिक शरीर का आधार बनता है और उसी के ऊपर नए जन्म में नया शरीर बराबर भौतिक रूप में निर्मित होता है तथा स्थिर रहता है। यह भी कहा गया है कि एक ही यथार्थ सत्ता से सब प्राणी अपने अपने वैयक्तिक जीवन में आते हैं और उसी में फिर विलीन हो जाते हैं। अब बिंदु नौवा है, कर्म सिद्धांत और उससे संबद्ध पुनर्जन्म का सिद्धांत पारलौकिक पर विशेष बल देता है तथा साथ ही साथ इसमें अवैज्ञानिकता पाई जाती है। ये दोनों आक्षेप अपरिपक्व मस्तिष्क से उत्पन्न निराधार और निरर्थक आक्षेप लगते हैं, क्योंकि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, अतः वह यदि इस जीवन से परे जीवन के विषय में चिंतन करता है तो यह उसके लिए अनहोनी बात नहीं, यह तो उसके स्वभाव के अनुकूल ही है। पृष्ठ संख्या 444। मनुष्य अग्रचेता होता है, उसकी ऊर्ध्वदृष्टि होती है, उसे परे के जीवन में सोचना और उसकी सच्ची व्याख्या करके अग्रसर होना उसके लिए स्वाभाविक है। दूसरे यह आक्षेप की पुनर्जन्म की अवधारणा अवैज्ञानिक है, यह भी निराधार है। इस आलोचना के उत्तर भी डॉक्टर राधाकृष्णन का यह उत्तर पर्याप्त और संतोषप्रद प्रतीत होता है। उनके शब्दों में पुनर्जन्म की कल्पना उसी प्रकार की एक बिल्कुल तर्कसम्मत कल्पना है जैसी अन्याय कितनी ही कल्पनाएं हमें दार्शनिक क्षेत्र में मिलती हैं और जो निश्चय ही नितांत शून्यता अथवा नित्य प्रतिकार की कल्पनाओं की अपेक्षा कहीं अधिक संतोषप्रद हैं। इस जगत में प्रतीपमान जितनी भी नैतिक अव्यवस्था अथवा दुखों की भी श्रृंखलता है, पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत ही उसकी व्याख्या कर सकता है। दुख का अनुचित विभाजन विश्व की विवेक पूर्णता के विरुद्ध जाता प्रतीत होता है, जैसे भौतिक इंद्रिय गम्य जगत की असमानताएं तार्किक विश्वास के लिए एक प्रकार की चुनौती है। इसी प्रकार नैतिक अव्यवस्था इस जगत में काम करने वाले सिद्धांत के औचित्य के लिए एक चुनौती है। यदि हमारा जन्म विवेकपूर्ण है तो फिर किसी प्रकार की भी बौद्धिक एवं नैतिक अस्त व्यस्तता नहीं होनी चाहिए थी। यदि नैतिक अस्त व्यस्तता एक नियति है तो परिणाम नैतिक जड़ता या शक्तिहीनता के रूप में होगा। नैतिक जगत में दृष्टिगोचर हो रही आश्चर्यजनक अस्त व्यवस्था को एक धर्म स्वरूप एवं महान जगत के शासक ईश्वर के अस्तित्व के साथ हमें समन्वय करना ही होगा। यह विचार करके कि संसार का संगठन एक अव्यवस्थित रूप में हुआ है, हम संतोष नहीं कर सकते। जो कल्पना नैतिक जगत की अव्यवस्था एवं दुखों के कारण की खोज करते करते मनुष्यों के धर्म स्वातंत्र तक पहुँचती है, उन असमानताओं की व्याख्या नहीं कर सकती जिन्हें लेकर मनुष्यों को इस संसार में डाल दिया गया है। पुनर्जन्म की सार्थकता पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने पुनः एक दृष्टि डालते हुए लिखा है कि यह पुनर्जन्म की कल्पना ही है जो हमारे आगे इन प्रारंभिक भेदों या असमानताओं की एक व्याख्या उपस्थित करती है। यह हमें अनुभव कराती है कि संसार में सुख और दुख प्रगतिशील शिक्षा एवं चरित्र के कारण ही है। दंड केवल प्रतिशोध के विचार से ही नहीं अपितु सुधार के विचार से भी दिया जाता है। हमें अपने पापों के लिए दंड मिलता है और साथ साथ उसी प्रायश्चित रूप दंड से हम पवित्र भी हो जाते हैं। हमें जो दुख मिलता है वह हमारी भलाई के लिए है। अब शीर्षक है सारांश। ऊपर उल्लिखित डॉक्टर राधाकृष्णन का उत्तर लगभग कर्म सिद्धांत के विरुद्ध लगाए जाने वाले सभी आक्षेपों के लिए पर्याप्त है। फिर भी कुछ लोगों ने एक आपत्ति कर्म सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के प्रति यह लगाया है कि यह व्यक्ति केंद्रित है। डॉक्टर डी बंदिस्टे ने अपने एक लेख में लिखा है कि कर्म सिद्धांत में एक और आपत्तिजनक बात है, उसका अत्यंत व्यक्ति केंद्रित होना। हालांकि कर्म सिद्धांत के समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति समाज में ही रहता है तथा व्यक्तियों की एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, तथापि कर्म सिद्धांत का आह्वान प्रमुख रूप से व्यक्ति को ही है। अधिकतर समय व्यक्ति की वर्तमान स्थिति के लिए उसके अपने पूर्व जन्मों की ओर ही हमें देखने के लिए कहा जाता है, जबकि सबको मालूम है कि उधर दिखाई कुछ देने वाला है ही नहीं। व्यक्ति के साथ हुई दुर्घटना का कारण कर्म सिद्धांत का समर्थक आदमी बाहरी दुनिया में ढूंढने के एवज में उस व्यक्ति के भूतकाल में और ज़्यादातर पूर्व जन्म में ढूंढने की कोशिश करेगा। पृष्ठ संख्या 445। यहाँ सामाजिक शक्तियाँ बेमानी हो जाती हैं। कहा यही जाएगा कि व्यक्ति की वर्तमान स्थिति के लिए उसके पूर्व जन्म के कर्म और उस पूर्व जन्म की स्थिति के लिए उसके भी पहले के कर्म उत्तरदायी हैं। प्रत्येक स्पष्टीकरण भूतकालोन्मुखी है और वह भूतकाल भी व्यक्ति का है, व्यक्तिनिष्ठ है और व्यक्ति केंद्रित है। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर बंदिस्टे एक सुझाव देते हैं कि कर्म सिद्धांत को व्यक्ति केंद्रित न माना जाए, कर्म सिद्धांत का दायरा बढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से ही कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की अवैज्ञानिकता दूर होगी तथा इसकी सार्थकता चरितार्थ होगी। अब शीर्षक है सुझाव। लेखक का सुझाव यह है कि सबसे पहले हमें यह हठ छोड़ना पड़ेगा कि व्यक्ति के आचरण का फल केवल उसी को भोगना पड़ता है तथा उसके आचरण का उत्तरदायित्व केवल उसी का है। पुनः कहते हैं, अब हमें कर्म सिद्धांत को व्यक्ति की भूमिका तक ही सीमित नहीं रखकर उसका दायरा व्यक्ति के साथ साथ समाज तथा बाह्य परिस्थिति तक भी बढ़ा देना चाहिए। जैसा करो वैसा भरो, यह बात व्यक्ति, समाज तथा परिस्थिति इन सब पर लागू करनी चाहिए। व्यक्ति के भले या बुरे कर्मों के परिणाम केवल उस व्यक्ति को ही भोगने पड़ते हैं, ऐसा समझना अर्ध सत्य है। सत्य यह है कि अपने आचरण के परिणाम अपने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि और भी कितने ही लोगों पर पड़ते हैं। लेखक पुनः आगे कहते हैं कि पड़ोस के घर किसी ने आग लगाई हो तो संभव है कि वह आग हमारे भी घर को लपेट ले। इस तरह के परिणामों को भोगना अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। यह बात आधुनिक व्यक्ति के गले नहीं उतरती, परंतु प्रत्येक आचरण के व्यक्तिनिष्ठ तथा समाजनिष्ठ भी परिणाम होते हैं। यह बात आसानी से सबके समझ में आ सकती है। कर्म सिद्धांत को अधिक सत्य तथा संतोषप्रद बनाने के लिए व्यक्ति के साथ समाज को भी व्यक्ति के आचरण के परिणाम भोगने पड़ते हैं। यह नया दायरा प्राचीन दायरे से जोड़ना होगा। लेखक व्यक्तिगत अमरता को तो अवैज्ञानिक मानता है, किंतु सामाजिक अमरता के पक्ष में तर्क देते हुए कहता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बावजूद समाज चलता रहता है। यह बात सभी को बिना किसी अंधविश्वास के माननी होगी। व्यक्ति अमर नहीं होते हुए भी मानव या जाति अमर है, ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है। भले कार्य के परिणाम भोगने के लिए उसे पुनर्जन्म लेना होगा। इस तरह की अंधविश्वासी बात बताकर उसे तसल्ली देने से बेहतर यह बात है कि उसके कार्य के होने वाले भले परिणामों का सामाजिक और भविष्यकालीन दायरा उसे बताया जाए। विवेकशील व्यक्ति इन बातों से भी संतुष्ट होकर भले कार्यों की ओर प्रेरित हो सकते हैं। प्रोफेसर बंदिस्टे का यह सुझाव पुनः आगे इसी निबंध में तब निरर्थक हो जाता है जब वे यह कहते हैं कि कर्म सिद्धांत को मैंने ऊपर प्रदान किया नया संदर्भ या सामाजिक अर्थ में आधुनिक व्यक्ति को पसंद आएगा, ऐसा मुझे लगता है। परंतु ध्यान में रखने की बात यह है कि यह संदर्भ नया होते हुए भी कर्म सिद्धांत की आत्मा वही कायम है कि करो वैसा भरो, आप ही अपने आप के निर्माता हो तथा शुभ काम करो। यदि प्रोफेसर बंदिस्टे का यही आग्रह है तो उन्होंने कौन सी नई बात की या कौन सा नया सुझाव दिया जिसे स्वीकार किया जा सके, यह समझ में आने योग्य नहीं है। कुछ लोग तो कर्मवाद और पुनर्जन्म को नया संदर्भ इसलिए देते हैं कि इससे किसी अति प्राकृतिक सत्ता को मानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कर्म सिद्धांत स्वतः बिना किसी के दिशा निर्देश या परिचालन के कार्य कर सकता है। पृष्ठ संख्या 446। विश्व की सारी पहेली इसी से सुलझ सकती है। प्रोफेसर बंदिस्टे या उनके जैसे अन्य किसी भी विचारकर्ता के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन का यह विचार स्वीकार करना ही होगा। इस जगत में प्रतीतमान जितनी भी नैतिक अव्यवस्था अथवा दुखों की विश्रृंखलता है, पूर्व जन्म एवं कर्म का सिद्धांत ही उसकी व्याख्या कर सकता है। दुख का अनुचित विभाजन, विश्व की विवेक पूर्णता के विरुद्ध जाता प्रतीत होता है। जैसे भौतिक इंद्रिय गम्य जगत की असमानताएं तार्किक विश्वास के लिए एक प्रकार की चुनौती है, इसी प्रकार नैतिक अव्यवस्था इस जगत में काम करने वाले सिद्धांत के औचित्य के लिए एक चुनौती है। यदि हमारा जन्म विवेक पूर्ण है तो फिर किसी प्रकार की भी बौद्धिक एवं नैतिक अस्त व्यस्तता नहीं होनी चाहिए थी। यदि नैतिक अस्त व्यस्तता एक नियति है तो परिणाम नैतिक जड़ता या शक्तिहीनता के रूप में होगा। नैतिक जगत में दृष्टिगोचर हो रही आश्चर्यजनक अस्त व्यस्तता को एक धर्म स्वरूप एवं महान जगत के शासक ईश्वर के अस्तित्व के साथ हमें समन्वय करना ही होगा। इस प्रकार कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का एक ओर जितना महत्व नैतिक दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में है, उतना ही महत्व सामाजिक दृष्टि से धर्म के अंतर्गत भी है। दोनों व्यष्टि तथा समष्टि के लिए आवश्यक है। कर्म समाज में व्यक्ति ही करता है और समाज उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। इस अर्थ में कर्म का सामाजिक महत्व कम नहीं है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों को अलग अलग रूप में देखने की न आवश्यकता है और न ही इन्हें पराशक्ति से अलग करके देखने की आवश्यकता ही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य का आचरण समाज में आदर्शों उन्मुखी हो, और आचरण आदर्शों उन्मुखी तभी होगा जब व्यक्ति और समाज ईश्वरों उन्मुखी होगा। ईश्वर या आत्मा या कर्म सिद्धांत को स्वीकार करना अंधविश्वास पूर्ण और अवैज्ञानिक नहीं है। अध्याय 29 समाप्त।